आम आदमी की खास कहानी। आप सुनते हैं कहानी संदीप पाटिल की। आज चारों ओर कितनी चहल पहल है। घरों और बाजारों की सजावट बच्चों के साथ साथ बड़ों की प्रसन्नता भी देखते बनती है। आज दीपावली है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर से लेकर गांव तक की चमक दमक में कोई कमी नहीं है। पर इस छोटे से गांव पिंपरी का एक घर जो शायद ही कभी दियों की रोशनी से जगमगाया हो। इस घर में रहने वाला परिवार कई वर्षों तक इसने दीपावली की रौनक को देखा ही नहीं है। खेल बताशे पटाखे और मिठाइयों के बिना लगता है इनका दिन आज भी बीत ही जाएगा। बड़ों और यहां तक कि बच्चों में भी त्योहार का ना तो कोई उमंग है और ना ही मनाने की कोई रत्ती भर भी इच्छा। गरीबी के काले अंधियारे में उमंगों के सभी रंग काले हो जाते हैं। यही कारण है कि नन्हा संदीप आज इस रौनक को शायद महसूस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही कठिनाइयों से हुई है। माता पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। अपना साथ साथ संदीप के अलावा दो और छोटे बच्चों के पेट की क्षुधा मिटाने लायक खाना मिल जाए, इसी महीने में उनके दिन और महीनों निकल जाते हैं। माता पिता के अथक प्रयास और परिश्रम के बाद भी कई बार उस छोटे बालक संदीप को अपने दो भाई बहनों के साथ कई कई दिन भूखे पेट गुजारने पड़ते। उन सबकी जिंदगी में आकांक्षाओं अभिलाषाओं सपनों उम्मीदों का कभी कोई स्थान ना था। इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद संदीप ने कहीं अपने मन के कोने में एक बहुत ही छोटा सपना पाल रखा था। वह पढ़ना चाहता था। महाराष्ट्र के सुदूरवर्ती गांव में 10x10 के मिट्टी के कच्चे मकान से लेकर केमिकल इंजीनियरिंग की डॉक्टरेट डिग्री के साथ भारत के प्रसिद्ध बिजनेस कॉरिडोर में आज श्री संदीप पाटिल के कदमों की आवाज सुनाई देती है। इसी यात्रा में संदीप ने हर कठिनाई का सामना इतनी दृढ़ता से किया कि आज उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है जो कि अनुकरणीय। संदीप का जन्म 21 जून 1981 को हुआ और वे महाराष्ट्र के शिंदखेड़ा जिले के पिंपरी गांव में बड़े हुए। इस गांव के 75% निवासी जनजाति हैं और बाकी 25% पाटिल कुल के सदस्य। यह गांव स्कूल डिस्पेंसरी पोस्ट ऑफिस यहां तक कि सड़क और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित था। इन्हीं कारणों से संदीप के मामा जी उन्हें अपने गाँव धांधरा में ले गए, जहां अधिकतर बच्चे स्कूल जाते थे और घर घर में उन पाटिल भाइयों की कहानियां कही जाती जिनमें से एक के पास साइंस में पीएचडी की डिग्री थी। कहीं ना कहीं इन बातों को सुनकर संदीप के मन में भी प्रभाव पड़ता रहा और धीरे धीरे रिसर्च की तरफ संदीप का झुकाव होने लगा। अपने बचपन के उन दिनों को याद करते हुए वे कहते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद था, पर टेलीविजन या डीजल इंजन की रिपेयरिंग को मैं बहुत ही ध्यान से देखा करता था। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद संदीप वापस अपने गांव पिंपरी आ गए। मां ने अब परिवार को संभालने और पालन पोषण के लिए संदीप के नाना जी की सहायता से किराने की दुकान की शुरुआत कर दी थी। बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए इस छोटे बालक संदीप ने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। गांव से स्कूल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। स्कूल से होकर संदीप शाम के समय दुकान संभालते और रात में अपनी पढ़ाई पूरी करते। अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ, बस कड़ी मेहनत किए जा रहे थे। सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए उन्हें फिर से धांधरा अपने मामा जी के पास जाना पड़ा, लेकिन कठिनाइयां अब भी जैसे संदीप के साथ साथ इस गांव से उस गांव चल रही थी। गांव से स्कूल जाने के लिए केवल एक ही बस थी जो सुबह सवेरे चलती और देर रात गांव पहुंचती। इस कारण संदीप तो बहुत थक जाते, लेकिन यह नन्ना परंतु बलशाली मन बिल्कुल भी थकता ना था। अपने समय का सदुपयोग करते हुए संदीप 12वीं में अच्छे अंक से पास हो गए। अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन कोर्स के लिए अप्लाई किया, पर उसमें एडमिशन नहीं मिला। संदीप ने घर में किसी को बताए बिना बीटेक के लिए भी अप्लाई किया और नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के यूडीसीटी जलगांव में उन्हें एडमिशन मिल गया, पर छोटे भाई और बहन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि परिवार की जो भी जमा पूंजी थी अब सबसे ज्यादा संदीप की पढ़ाई के लिए जरूरी थी। कॉलेज की दुनिया बिल्कुल अलग थी, कई सुनहरे रंगों से भरी थी। संदीप के सभी बैचमेट्स संपन्न परिवारों से थे। संदीप अपने आप को इस नए माहौल में ढालने का भरसक प्रयास कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक जबरदस्त झटका लगा जब वो पहले ही साल फेल हो गए। उदास हताश संदीप वापस अपने गांव आ गए। इस दौरान माँ और पिताजी ने संदीप का साथ दिया क्योंकि उन्हें उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। 3 महीने संदीप ने खेती की पर उसमें भी मन ना रमा। आखिरकार वापस कॉलेज जाने का निर्णय लिया। कुछ चीजें मुश्किल तो जरूर होती हैं पर उन्हें कर दिखाना भी जरूरी हो जाता है। अगले 6 महीनों में संदीप ने ना केवल सारे पेपर्स क्लियर किए बल्कि बहुत अच्छे ग्रेड्स भी हासिल किए। बस इस घटना ने संदीप की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। आत्मविश्वास जो शायद जिंदगी की आपाधापी में कहीं गुमसा हो गया था उसे संदीप ने वापस पा लिया। सभी टीचर्स और प्रोफेसर्स ने उनका हर कदम पर साथ दिया और मार्गदर्शन किया। बीटेक करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाना न केवल संदीप बल्कि माता पिता की भी इच्छा रही होगी, परंतु अपने प्रोफेसर की सलाह पर संदीप ने और आगे पढ़ने का फैसला किया। हमेशा की तरह अब भी माता पिता संदीप के साथ थे और यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से एमटेक की पढ़ाई शुरुआत हुई। यहीं पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर देवेकर ने संदीप को आईआईटी मुंबई जाकर सेकेंड ईयर का मास्टर्स खत्म करने की सलाह दी। मुंबई आकर संदीप को एहसास हुआ कि अब बस उस क्षितिज को छूने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उन्होंने हायर स्टडीज के लिए कई विदेशी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी किया पर अपनी कमजोर कम्युनिकेशन स्किल को बाधा बनते देख उन्होंने आईआईटी से ही रिसर्च करने का निर्णय लिया। वर्ष 2006 में संदीप ने आईआईटी कानपुर से प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की निगरानी में सर्वोच्च डिग्री पीएचडी की पढ़ाई आरंभ की। इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने संदीप को अपना पोटेंशियल, स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट एरिया का बोध हुआ। उनके सहयोगी ई स्पिन नैनोटेक को डिजाइन और असेंबल करने में असफल रहे जिसके कारण प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने संदीप को यह कार्य सौंपा। संदीप ने सफलतापूर्वक कार्य का संपादन किया और फिर उन्हें आभास हुआ कि नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में उनकी विशेष रुचि है। साथ ही उनके मन में अपनी एक कंपनी शुरू करने का एक छोटा सा सपना आया जिसे उनके गुरु प्रोफेसर आशुतोष जी का आशीर्वाद भी मिल गया। पर यह यात्रा इतनी आसान न थी। परिवार ने अब तक बिना कुछ मांगे संदीप का साथ दिया था जबकि वे चाहते थे कि संदीप एक बहुत अच्छी नौकरी करे। पहली बार मां ने एक बड़ा घर बनवाने की इच्छा जताई। मां की इच्छा को पूरी करने के लिए संदीप ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और 2 मंजिला घर तैयार कराया। अब अपनी कंपनी की शुरुआत करने के मकसद से संदीप प्रोजेक्ट्स लेने लगे। अपने पहले ही प्रोजेक्ट जो आईआईटी कानपुर के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए था उसमें संदीप को 1.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। आईआईटी हैदराबाद के प्रोजेक्ट में उन्हें करीब 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। पर संदीप बिजनेस को चलाने की बारीकियों से अनभिज्ञ थे। आईआईटी कानपुर स्थित सिडबी इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की मदद से संदीप ने 2010 में अपनी कंपनी रजिस्टर की। 2012 में उन्होंने अपनी थीसिस पूरी कर ली और साथ साथ यूएस, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट इन सबके 4 अहम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी पूरे किए। संदीप की कंपनी ईस्पिन नैनोटेक की नींव मजबूत हो गई। कंपनी का मुख्य उद्देश्य हाई क्वालिटी लो कॉस्ट नैनोफाइबर यूनिट पर रिसर्च करना है। आज देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कंपनी अगले 6 महीने में पॉल्यूशन कंट्रोल मास्क, वाटर फिल्टर, एयर फिल्टर के लिए भी थोक में फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण करेगी जिसके मुख्य क्लाइंट्स भारत की सभी रिसर्च लैब्स होंगी। आने वाले 5 सालों के लिए संदीप का लक्ष्य है कि वे अपनी इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के साथ साथ 10 से 50 करोड़ तक के टर्नओवर को भी छूना चाहते हैं। अपनी कंपनी की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में निवेश कर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी संदीप अपनी जगह बनाना चाहते हैं। कहते हैं ना, मन सद गया तो सब सद गया। संदीप ने ऐसा ही किया। अपनी वर्कशॉप का ना होना कानपुर में अच्छे मैन्युफैक्चरर और क्वालिटी कंपोनेंट्स का ना मिलना, वर्कफोर्स की कमी, अपने मार्ग में आई हर एक छोटी बड़ी बाधा को शांत मन से उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इस मुकाम पर पहुंचकर भी श्री संदीप पाटिल बहुत ही सरल हृदय हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। संदीप भी उसी वृक्ष की तरह हैं जो अपने शहर कानपुर के ही युवा वर्ग को प्रशिक्षित कर अपनी कंपनी में रख रहे हैं। अपनी सफलता का सारा श्रेय वे अपने माननीय गुरु प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को देते हैं। स्वयं, परिवार और समाज की उन्नति हो, यही उनका ध्येय है। भावी इंटरप्रेन्योर्स के रोल मॉडल डॉक्टर संदीप पाटिल का मानना है कि हर माता पिता को अपने बच्चे को एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर करने की अनुमति देनी चाहिए, और क्योंकि हर एक बच्चे में अपना मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता होती है, बशर्ते वह पीयर या सोसाइटी प्रेशर से ना दबे। अपनी क्षमताओं और गुणों से पूर्णतया अवगत होने के कारण ही श्री संदीप पाटिल के व्यक्तित्व में निर्भीकता और निडरता है, और शायद उनका मन बशीर बद्र का यह शेर भी गुनगुनाता हो कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन ही जाएगा।